अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। अब जादूगर की पहचान कैसे होती है? एक तो ये बात याद रखें कि जब कोई आपकी माँ का नाम पूछे ना, तो समझ लें कि ये जादू के साथ इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि जो जिसने कुरान से कोई आपको काम करके देना है ना, वो ये आपकी माँ का नाम पूछने से उसका क्या ताल्लुक है? माँ का नाम जो भी हो, कुरान पाक से भी दम होते हैं, वो सही है, वो करने भी चाहिए, रुकिया करना चाहिए, लेकिन जो लोग माँ का नाम पूछें उनका मकसद क्या है? मकसद यही होता है कि उन्होंने जादू करना होता है। इसी तरह वो जो कोई ऐसी चीज मांगे कि जिसमें इंसान का पसीना लगा है, जैसे कोई कमीज है, कोई रुमाल है, इसीलिए आप जब भी अपने कपड़े डोनेट करें ना, तो कभी अपने पसीने वाले पहने हुए कपड़े ना डोनेट करें, उनको धो के फिर करें। आपको नहीं पता अगर कोई खबीसा इंसान हो और वो ये काम करता हो तो वो उसके ऊपर जादू कर सकता है जिसमें किसी का पसीना लगा हो, यानी आप पहन के उतारे हैं तो वो ना दे उस तरह। तो अच्छा, इसी तरह अगर वो कोई जानवर मांगता है कि ये जानवर आप करके वहां पर फेंका, हम कहते ना वो खुद कुछ नहीं कहता, वो तो बस कहते हैं वहां पे सदका करके आओ, ये सदका हो रहा है, फलाना जानवर वहां पे जाके फेंक के आए, ये सदका है। अच्छा, फिर जो कोई कुछ ऐसी चीजें लिखता है या पढ़ता है या ऐसी लाइंस लगा रहा है हिसाब वगैरह की, और उसमें डिजिट्स लिखता है, उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखता है जिनकी समझ नहीं आती, तो फिर इसका मतलब है कि वो भी कोई ऐसी बात है जादू की। या कोई ऐसा कपड़ा देता है ऊपर लेने के लिए जिसमें आप स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, उनमें हरूफ लिखे हुए, नंबर लिखे हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ये भी जादू की पहचान है। या ये कहता है आपने बस इतने दिन अलग थलग रहना है, किसी से नहीं बात करनी, किसी से कुछ नहीं करना। और मुझे अफसोस होता है हमारे बैक होम मुल्कों में तो ऐसी चीजें, इन मुल्कों में भी आके लोगों ने यही शुरू कर दिया और इतना जबरदस्त कारोबार इसको बना लिया कि ऐश पे पैसे मिलते हैं, घर बैठे लोग आ जाते हैं ना, कुछ करना है ना, कोई जाना है ना आना है ना, कोई दफ्तर खोलना है, बस घर बैठे मुरीद आते जा रहे हैं, अकीदतमंद आ रहे हैं। वो हमारी अकल मारी भी है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऐसे गुलाम है कि जैसे हम चाहते हैं बस वैसा हो जाए। अगर कोई बीमार है, क्या बीमार के लिए आपके नबी ने कोई दुआएं नहीं बताई, आपको कुछ गाइड नहीं किया, वो पढ़े नहीं, उनके ऊपर हमारा ईमान ही नहीं, उनको तो हम कुछ समझते नहीं, तो हम इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं यहां से सेहत मिले। फिर काम कारोबार या इसके अंदर कोई परेशानी है क्या? इसके लिए कोई चीज नहीं आपको बताई जो हम उन लोगों के पास जाते, उनके पास ही मिलेगा रिस्क, उनके पास इतनी पावर है, उनके पास पावर हो ना तो वो अपने मसले खुद पहले हल कर ले। एक लो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और उसका ईमान जा चुका होता है, उसको पता भी नहीं होता, वो अपने आप को समझता है मैं मुसलमान, कुफर में एंटर हो चुका होता। कभी वो कहते हैं कि 40 दिन तक आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, कभी वो कुछ कहते हैं कि ये चीजें ना आपने जमीन में जाके दफन करनी है, कभी आपको कोई जैसे कोई औरत है वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो वो कोई उसको ऐसी चीज देते हैं जिसमें नजासत होती है या जिसमें कोई ऐसी ऐसी शिरकिया बातें पड़ी होती हैं जो उसको देते हैं। कभी उसके जो भी मरीज होता है उसका नाम, उसके शहर का नाम और जिस वजह से वो आया है वो बताते हैं कि दूसरा बंदा कन्विंस हो जाए कि बस ये तो बहुत पहुंचे हुए। और ये मैं किसी का नाम लिए बगैर वैसे ही आपको एक बात बताती हूँ, ये कोई अगर ऐसा आपको बताए ना तो समझ लें कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे कोई किसी को नहीं बता सकता कि आपका नाम क्या है या आप क्या करते हैं या आपका क्या मसला है। हज पर, ये हज का वाक्या है, इस तरह के लोग ऐसे काम भी करते हैं। कोई थे जो कि किसी ग्रुप के मुअल्लिम थे, वो जब अपने साथियों के साथ टैक्सी में बैठे तो उन्होंने टैक्सी वाले को बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये मसला है, ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम इस चीज से गुजर रहे हो। और वो हैरान और परेशान और हक्का बक्का रह गया कि आपको कैसे पता, और ये सारी बातें तो ठीक है, समझ लें इसके पास जिन्नात है जो जिनने आके बताया, मतलब ऐसे बैठे बैठे किसको, हमें तो नहीं ख्वाब आ जाता कि किसी का क्या मसला। सारा कुछ इसको बता दिया। कहने का मकसद ये कि जो साथी आए हुए हैं ना, इनको अब पता चल जाए कि मैं तो क्या, मेरी बात है, और फिर ये भी मेरे पास आएंगे, सब पे धाक बैठ जाएगी ना, और क्या होता है इसका मकसद। तो ये इस किस्म के काम करते हैं। इसी तरह किसी ने मुझे बताया, यही न्यूयॉर्क सिटी में, यहाँ पे भी ऐसी चीजें आ गई कि कोई जा रहे थे, तो एक आदमी जल्दी जल्दी साथ चलने शुरू हो गया, कहने लगा क्या इंडिया से हो? मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान से हो? हाँ। अच्छा, बहुत परेशान रहते, बहुत फिक्र करते हो। अब ये तो हर कोई परेशान रहता है, हर एक की फिक्रें। अच्छा, तुम कारोबार करने लगे हो, एस नाम का तुम्हारे घर में कोई है, और एस नाम का बंदा तुम्हें कोई राबता करेगा, उसके साथ ना करना, वो बहुत तुम्हें नुकसान देगा। ऐसी ऐसी बातें करके क्या बताना चाह रहे दूसरे को? मुझे बड़ा चीज पता है, इंसान कहेगा हाँ भाई वाकई मेरे मसले, अच्छा आप बताएंगे क्या। वो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर दे इनकी बातों में ना। तो ये इसका मतलब उनके पास जिन्नात है, जो जिन्होंने आके कोई खबरें दी है। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर जाके खबरें सुनते हैं, आते हैं उनमें झूठ सच मिला के लोगों को बताते। या कोई ऐसा भी होता है कि जो जो अपने पास आने वाले को जो जिसका मसला होता है, उसके कागज पे कुछ चीजें लिखता है जिनकी कुछ समझ नहीं आती ये क्या है, और फिर उनको कहता पानी में मिला के तो पिए। तो ये सब चीजें पता चलती है कि ये जादू से रिलेटेड है, और जादू के तोड़ के लिए बाज लोग क्या करते हैं, वो फिर जादू के उसके पास चले जाते। भाई वो आप सोचें, हमें नफरत होनी चाहिए जादूगरों से कि वो कितने गलीज काम करते हैं, और फिर भाग भाग के जादूगरों के पास जा रहे हैं। नहीं, वो जादू हो गया, अब इसका तोड़ जादू से ही होगा? नहीं, अल्लाह के कलाम से। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगर ढूंढा था कोई? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हल्का सा एक असर हुआ था कि भूल जा रहे थे, जो काम किया था उसको भूल जाते थे कि ये किया था कि नहीं किया था, अपनी बीवियों में से उनके पास गए थे कि नहीं गए थे। और अल्लाह ताला ने कलाम उतारा इस चीज से निकालने के लिए, ये नहीं फरमाया कि जाएं आप भी किसी जादूगर के पास जाके इसका तोड़ कर आए। हम कहते नहीं, बहुत बड़ा जादू है, काला जादू हो गया, आप इसका तोड़ जो है फलाने बड़े जादूगर के पास ही होगा। अगर किसी को कह दें सूरह फलक और नास पढ़े, तो वो तो सोचते हैं ऐसी कोई हमें बहुत ही छोटी सी चीज बता दी, हालांकि अल्लाह ताला ने बता दिया, हमें समझा दिया कि अल्लाह की पनाह में आओगे तो बच सकते। तो ये जब इससे इसका इलाज अगर करना हो, तो एक तो इंसान ये करे कि देखें गुनाहों को छोड़ना होगा, कबीरा गुनाह जो है इनको छोड़ना होगा, नमाज को पाबंदी से पढ़ना होगा, नशे वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, म्यूजिक वगैरह घर से हटाने होंगे, तस्वीरें या स्टैचूज हटाने होंगे, यानी ये चीजें ना जहां से जिनसे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बेपर्दगी अगर करते हैं तो उससे निकलना होगा, सुबह शाम के अजकार पढ़ने होंगे। तो इसके लिए जो जादूगर जब किसी के ऊपर जिन का ना चाहते ना कि कोई जिन इसके ऊपर हावी हो जाए या इसमें दाखिल हो जाए, तो वो हर वक्त में दाखिल नहीं हो सकता, जो कोई इंसान प्रोटेक्टेड होगा उसमें नहीं दाखिल हो सकता। और इंसान कब अनप्रोटेक्टेड होता है? जब वो अल्लाह के इज़्कार को छोड़ देता है, जब वो किसी ऐसी इमोशनल उससे गुजर आता है, मसलन बहुत शदीद गुस्सा जब आए ना, तो इंसान रूहानी तौर पे कमजोर हो जाता है, तब वो एंटर होता है, या बहुत गफलत हो या बहुत खौफ हो, ये टाइम्स होते हैं जब इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, तब वो एंटर होता है। हर एक के ऊपर नहीं असर कर सकती ये चीजें, आपको पता है हर एक पे नहीं असर करती, इसलिए हर एक पे नहीं असर कर सकती। जैसे कि आप देखें वायरस फैलता है, हर एक तो नहीं बीमार हो जाता, जो लोग कमजोर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वही बीमार होते हैं ना। जब आप रूहानी तौर पे कमजोर होंगे तो ये चीजें आपके ऊपर असर करेंगी, और जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो फिर ये चीजें नहीं असर कर सकती। इसके बचाव के तरीके क्या हैं? कोशिश करें कि वुजू की हालत में रहें, अल्लाह का जिक्र जुबान पे जारी रखें, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र होता है शैतान भाग जाता है। रात को भी वुजू करके सोएं। इसी तरह आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, जब बाथरूम में जाएं तब भी बाथरूम की दुआ पढ़ें, क्योंकि ये खबीस जिन्नात और ये जो हैं ये वहां पे होते हैं, नापाक जगहों को पसंद करते हैं, नापाक लोगों को पसंद करते हैं। इतनी गंदगी में अगर आप रहेंगे, घर गंदा है, बॉडी गंदी है, तो कि ये चीजें आएंगी, कपड़े गंदे रहते हैं, माहौल आपने सारा गंदा रखा, तो फिर ये चीजों पसंद करती हैं ऐसी जगहों को। इसलिए अपनी सफाई रखें, अपनी अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने गैर जरूरी बालों को साफ करें, और जब आपके पीरियड खत्म हो जाए तो जल्दी से जल्दी शावर लेकर नमाज वगैरह अपनी शुरू करें। गंदगी में ना घूमते रहें। जब आपकी हैज के दिन है तब भी हिफाजत की दुआएं पढ़नी नहीं छोड़नी, ये नहीं कि बस सारा कुछ छोड़ के आप छुट्टी हो गई है। इसी तरह आपको पता है सूरह बकरा, इससे शैतान घर में दाखिल नहीं होता, तो ये पढ़ें। जब मियां बीवी आपस में ताल्लुक करें तो उस वक्त भी इसकी दुआ, मसनून दुआ जो सिखाई गई है वो पढ़ें। और जो जो हमें इसमें बताया गया है, कुछ आपको मैं बताती हूँ। वैसे तो हमारे को पता है इसमें सुबह शाम के अजकार में तमामी जिक्र आ जाते हैं, मगर आज मैं आपको कहूंगी पांच जिक्र। अगर जो लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकते और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते, इतना हमसे नहीं किया जाता, तो ये पांच अजकार है ना, ये कभी भी ना छोड़े। और ये ज्यादातर आप में से लोगों को ये ऑलरेडी याद होंगे, ये पांच आपने कभी नहीं छोड़ने। इनमें नंबर वन है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी जो है ये सुबह भी पढ़नी है, शाम को भी पढ़नी है। सुबह को पढ़ेंगे तो शाम तक हिफाजत है, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक हिफाजत है। तो ये लाजमी बना लें कि ये चाहे चलते फिरते ही पढ़े, लेकिन पढ़नी है मुझे फजर के बाद और असर के बाद। नंबर टू चीज माउजात। माउजात क्या है? एक माउजा तईन है और एक माउजात, फर्क समझ आता है? माउजा तईन क्या है? तईन या नून से पहले जबर आ जाए तो क्या होता है? दो, दो का माना, यानी फलक और नास। और माउजात क्या है? फलक भी, नास भी और सूरह इखलास भी, इनको भी सुबह और शाम तीन तीन दफा पढ़ना। ये समझने ऐसे जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखा रही हूँ ना मैं आपको, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है इतनी दफा ये गोली लेनी। तो आपने नहीं, कुछ भी नहीं आप पढ़ सकते ना, आपने ये पांच चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये जरूर करनी है। अच्छा, ये हो गया, क्योंकि इनसे भी जिसने मौजात पढ़ लिए तो हदीस में आता है कि वो हर चीज के लिए काफी होगी। तीसरी चीज चौथा कलमा। चौथा कलमा जिसको कहते हैं ना हम, वैसे तो उस चौथा कलमा कोई सुन्नत में इसको चौथा कलमा नहीं कहा गया, मगर अल्फाज सही है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये भी आप सुबह शाम की दुआओं में देख लेंगे। ये 10 दफा, वैसे तो 100 दफा पढ़े तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 टाइम सुबह और 10 टाइम शाम, तो ये किला बन जाएंगे उसके लिए। नंबर 4, बिस्मिल्लाह ला यदुरु मा इस्मी शैइन किल्लती वला फी समाई वहुव समीउल अलीम। ये भी सबको आता होगा, सुबह को पढ़ लें तो शाम तक कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, और शाम का पढ़ेंगे तो सुबह तक, इसी वो भी तीन दफा। इसी तरह तीन दफा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती, एक तो मिन कुल्ली शैतानि व हामातिन वो भी है, तो लेकिन दूसरा भी औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, सामने नहीं है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्रि मा खलक, हर चीज के ही उससे, वरना वैसे मिन कुल्ली शैतान इन वहामत इन मिन कुल्ली ऐन लामत। जब आपने कहीं जाना हो ना ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे नजरे बद तो नहीं हो जाएगी, अब डरते डरते हम कहते हैं जाना ही नहीं हमने, हाँ वो मुझे नजर लगा दे, तो आप किस किस से छुप के बैठेंगे? आपको क्या पता कौन नजर लगाए कौन नहीं लगाए, कभी कभी तो प्यारों की नजर लग जाती है, तो क्या करेंगे? सब से छुप के बैठ जाए फिर घर में, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो फिर वो पढ़े, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन कुल्ली शैतानि व हामति व मिन कुल्ली ऐनि लामत। और दूसरी जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसको जो मैं पढ़ने में करी, वो तो मिन शर्रि मा खलक है ना, वो तो हर एक मखलूक के शर से जो भी अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उसमें सभी आ गया ना, शैतान भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब डरने की बात नहीं है, वो नजर लगाएगा, वो ऐसे कह देगा, वो कर देगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए हसद से बचने के लिए भी, नजरे बद से भी, और क्या नाम है, जादू वगैरह सबकी चीजों से आपके लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांच चीजें, ये समझ लेंगे पांच मेरे लिए गोलियां हैं या पांच मेरे वैक्सीन हैं या जो भी आप इसको कह लें, इन पांच को नहीं छोड़ना और ये याद कर लें। जो अगर नहीं किसी को आती तो, अदरवाइज मुझे लगता है तो सबको ही आती होंगी कि ये हमने जरूर करना। अच्छा, जो इनके इलाज में ना एक कुछ चीजें वैसे भी जो बताई गई हैं, वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुंह सात अजवा खजूरें खाने को फरमाया, तो वो अजवा खजूर खा लें सात, तो उस दिन किसी किस्म का जहर या जादू नहीं नुकसान देगा उस दिन। ठीक है, तो वो उस दिन के लिए है। मगर अच्छा, इसी तरह ये भी बताया गया है कि बेरी के पत्ते लेकर अगर किसी के ऊपर हो ही गया, अव्वल तो पहले से ही अपना इंतजाम रखें, पहले से ही ऐसी चीजों की हिफाजत रखें। देखें, आप सर्दी में जाने लगते हैं ना तो आप जैकेट पहनते हैं, हिफाजत करते हैं ना अपनी। क्या बात है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, हमें पता होता है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द वो हैं। अगर ऐसा कुछ भी शुबा है तो पहले से इंसान हिफाजत रखे। तो अगर लेकिन हो गया है तो फिर आप बेरी के साथ पत्ते लेके सिलबट्टे पे कूट लें, पानी मिला लें उसमें, फिर आयतल कुर्सी पढ़ के इस पे दम करें और जिस पे भी जादू किया गया उसको तीन घूंट पिला दें और बाकी पानी से उसको गुसल दे दें। ये आपको इब्ने कसीर में भी मिल जाएगा। और सूरह फलक और नास तो आपको पता है कि उस जैसा तो कोई तावीज है नहीं और ना ही आयतल कुर्सी जैसा कोई तावीज है, तो ये तो काफी है इंसान को, ये दूर कर देती है शैतान को। ये चीजें कुछ मैंने चाह कि आपको बता दूं। और ये चीज खास तौर पे किस लिए करते थे, दरमियान में फूट डालने के मियां और बीवी के। आपको पता है कि ठीक है और भी बहुत सारे बुरे काम हैं जिनको शैतान कराता है या जिनसे शैतान खुश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा शैतान किस चीज से खुश होता है, मियां बीवी में फूट डाला। क्योंकि मुस्लिम की हदीस में हमें यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शैतान अपना अर्श जो है वो भी, वो जो बड़ा इबलीस जो शैतान है वो भी तो इनका लीडर है ना, वो तो इनका बादशाह है, तो वो शैतानों के आगे अपना थ्रोन लगाता है पानी पे, फिर अपने लश्करों को बहकाने के लिए भेजता है। सबसे ज्यादा उसके नजदीक जो मर्तबे वाला है, सबसे ज्यादा उसके नजदीक जो बहुत बड़ा हुआ है फितने में, यानी जिसने सबसे बड़ा कारनामा किया है, वो कौन होता है उसके नजदीक, वो जो आगे कहता है मैंने मियां बीवी के दरमियान झगड़ा डला दिया और उनके अंदर जुदाई करा दी। सब आके अपने अपने कारनामे बताते हैं, मैंने सारा दिन में ये किया, वो किसी ने कुछ कराया होता है, किसी ने कुछ कराया होता, तो सारे बुरे ही काम होते हैं ना। लेकिन जो आके कहता है ना कि मैंने मियां बीवी में झगड़ा करा दिया और जुदाई करा दी, उसको वो गले लगाता है, कहता है तूने बहुत बड़ा काम किया, उसको अपने पास बिठा लेता, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि इससे नस्लें खराब हो जाती हैं। आपको पता है यहाँ पे ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, वहां पे बच्चों की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है, वहां पे दो खानदानों के दरमियान कैसी दुश्मनी पैदा हो जाती, वो उसके बहुत फार फ्लंग इफेक्ट्स होते हैं, छोटे नहीं होते। इसलिए ये इतना बुरी चीज है। और माजरत के साथ के कुछ लोग जादू नहीं कराते मगर वो वही काम करते हैं जो ये जादूगरों के जरिए कराते हैं ना, वो काम वो वैसे ही कर रहे होते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कि मियां बीवी में अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अतः बस वे तो जोरू का गुलाम ही हो गया, बस पीछे पीछे फिरता रहता है मियां। तो भैया आपको क्या, अगर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है, वो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, तो हमें क्या इससे, अब उस पे खुश होने की बजाय जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि अब इसको किस तरह से किया जाए इस चीज का इलाज। कि अब जब देखें जादू भी क्या है, अल्फाज ही है ना, कुछ कलिमात ही है ना, जैसे आप किसी को डंडा मारें तो उसको चोट लगती है ना, इसी तरह अल्फाज की भी चोट होती है और अल्फाज के भी असरात होते हैं। जैसे आप देखते हैं बाज दफा कोई ऐसी तकरीर करता है कि लोगों में गुस्सा इतना भर जाता है वो मरने मारने पे उतर आते हैं, बाज कोई आप ऐसा बयान सुनते हैं आपके आंसू निकल आते हैं, हर दफा आप किसी के अल्फाज सुनते हैं आपको हंसी आ जाती है, सब अल्फाज ही तो है ना, तो अल्फाज में तासीर होती है, अल्फाज ही का हेर फेर होता है जो जादू के कलिमात बनते हैं, और यही अल्फाज जब हम बार बार किसी के कानों में डाले जाएंगे तो वो भी यही असर करेंगे कि मियाँ बीवी में जुदाई हो जाएगी। अब बार बार किसी को यही सुनाते जाना तुम्हारी बीवी तो ऐसे करती है, और तो बच्चों का तो उसको कोई ख्याल ही नहीं, अपना तो कोई ख्याल नहीं करती, ऐसे तुम्हारी बीवी को खाना नहीं बनाना आता, देखो जरा कैसा बनाया, उसकी तारीफियां हर वक्त करते रहना, देखो घर कैसा रखती है, बिल्कुल इसको सलीका नहीं। अब आदमी जो होते हैं ना वो खुद शायद उस चीज को तवज्जो भी ना दे, वो तो सारा दिन का गया हुआ शाम को आया, जब उसको ऐसी बातें कहते रहेंगे तो वो क्या क्या उसके ऊपर असर हो, इन अल्फाज का भी तो असर होता है, उनको अपनी बीवी बुरी लगने शुरू हो जाती है, और हम कहते नहीं हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं, मैं तो कुछ कहती ही नहीं हूं। देखिए हम सब जो है ना, हम सब औरतें कहीं ना कहीं नंद है, कहीं ना कहीं देवरानी या जेठानी है, बाज हम में से सासी हैं, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम देखें कि हम किस तरह से मियां बीवी, या हम किसी किसी जगह पे भी बेटी की माँ है, हम क्या बातें करते हैं जिससे कि दूसरे के लिए अपने स्पाउस की नफरत या उससे बेजारी पैदा हो जाए, हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम उनके उनको उनके हाल पे छोड़ दें। बाज तलाके ही, यकीन करें मेरे पास तो आते हैं ना मसले में, इसलिए ही आपको बता रही हूँ, तलाके नौबत पहुंचती इस वजह से जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है, वो बड़े अच्छे भले रह रहे होते हैं, खुद अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर वो उल्टा सीधा कुछ करा ही देते हैं। तो जब हम एज अ नंद या एज अ देवरानी जेठानी या एज अ सास, जब हम कोई ऐसे कलिमात बोलते हैं, ऐसी बातें दिमाग में डालते हैं, भाई बहुत चहीता है, भाई को क्या है, भाई से इतनी हमदर्दी है, बेटे से इतनी हमदर्दी आए, मेरा तो लाडला बेटा देखो क्या, इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, या हमें इस तरह की हम काम करने लगते हैं ना, तो आपस में उनके कोई मोहब्बत नहीं पैदा होगी, नफरतें ही होंगी, हाय मेरी माँ तो मेरी इतनी हमदर्द है, देखो जरा इसने वाकई मेरा ये हाल कर दिया। तो ये मोहब्बतें अपने पास रखें संभाल की, इनके जरिए मियाँ बीवी के दरमियान ना तफरीक डालें, अगर उनके दरमियान तफरीक पड़ती है तो हमने क्या काम किया, वो ही काम किया जो जादू कर करते हैं, सेम वो जादू के जरिए कर रहे हैं, हम अपने अपनी जली कटी बातों के जरिए कर रहे हैं, हम फूंकते रहते हैं दूसरे के कानों के अंदर, एक दिन तो वो उसको गुबार आएगा, वो जाके लड़ेगा, और लड़ेगा तो फिर वो भी आगे से लड़ेगी, या फिर हम बैठ के कहेंगे हाय हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, तो देखो इस तरह ही घर टूटते हैं, इसमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सब अपने गिरमानों में देखें, किसी का ना कहें वो जो हाँ हाँ फलां भी तो ऐसे, नहीं अपने आप को देखें, मैं अपने भाइयों के घरों में कितना अमल दखल करती हूँ, अपने बेटों के घरों में, अपनी बेटियों के घरों में कैसा मेरा अमल दखल है, इससे उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, या तेरा मियां तो तेरा ख्याल ही नहीं रखते, कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, इस तरह की बातें करने से फूट पड़ेगी, और कुछ नहीं होगा, अगर नफरत नहीं भी होगी तो स्टार्ट किससे होता है, एक दूसरे से बेजारी होने लगती है, दूसरे की वर्थ खत्म हो जाती है, तो अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात से भी परहेज करें। तो यहाँ पे क्या है, देख लें कितना बड़ा कुरान के अंदर ये बात आ गई है कि वो जादू के जरिए ये काम कराते थे, और शैतान का, मैं मुस्लिम की हदीस आपको सुना दी है कि शैतान किस चीज से सबसे ज्यादा खुश होता है, फिर भी हम यही काम करना चाहते हैं जिससे शैतान खुश हो। एक प्रॉब्लम मेरे पास ये क्या आया था, भाई जो भी उसके घर में थे, सास या ससुर जो भी थे, उनको ये हो गया कि ये बच्चे को खाना तुम क्यों ज्यादा खिला रही हो, उसके ऊपर लड़ाई हो, जब वो टोकने लगे उसने आगे से कुछ बोला, उसके बाद शोहर बीच में कूद पड़ा, और उसके बाद वो लड़ाई हुई कि तलाक तक नौबत पहुंच गई, एक बच्चे को खाना खिलाने की उसके ऊपर ज्यादा खिला रही थी या कम खिला रही थी, ऐसी कोई बात थी। तो ये चीजों में बहुत केयरफुल रहना है हमें, बहुत ज्यादा, खास तौर पे जिस वक्त के हम घरों में ही रहते हैं और वहां पे हम सारा वक्त देख रहे होते हैं, अपने सामने चीजों को, तब तब बहुत केयरफुल रहें ये अपनी जुबान से कोई ऐसी बात ना अदा करें। तो इसीलिए तो आपको कहते हैं ना कुरान पढ़ें, अपना ध्यान कहीं लगाएं ताकि ये इन चीजों का टाइम ही ना मिले। जो इन चीजों का टाइम मिलता ही तब है जब इंसान जो काम की फायदा मंद चीज है जो हमारी आखिरत में काम आने वाली उसकी तरफ तवज्जो होती नहीं, तो फिर जाहिर है इधर उधर नजर रखेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। ये अल्लाह ने हमसे नहीं सवाल करने, ना कब्र में हमसे सवाल होने कि आपके घर में आपकी बहू या आपकी भाभी या आपकी देवरानी जिठानी क्या करती थी, उनकी रिपोर्ट दे, ये मेरे से और आप सवाल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी आफरत संवारने के लिए अपने वक्त को कीमती जानते हुए इसमें हम कुछ फायदेमंद चीज अपने लिए करें, ना कि स्पाइन में अपनी जिंदगी गुजारते। तो فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, حالانکہ وہ نہیں نقصان دینے والے اس کے ساتھ کسی کو بھی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جادو چل گیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا لوگ سوچتے ہیں جادو جادو بہت بڑا جادو ہے یہ تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا, تو یہ یاد رکھو اتنی ڈرنے کی ضرورت ہے, آئے مجھ پہ آپ کوئی جادو نہ کر دے, کئی لوگ بےچارے اسی میں ڈرتے رہتے اب میں میرے پر جادو نہ ہو جائے۔ بھائی مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی مجھے, اور اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو کسی چیز کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی نقصان دے۔ جب آپ ایک بڑے قلعے میں داخل ہو گئے جو بہت مضبوط ہے تو وہ شیطان تو باہر ہی رہ گیا۔ قلعے میں جانا آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے لیے حفاظت کے لیے یہ دعائیں پڑھیں تاکہ شیطان باہر ہی رہ جائے اور آپ کے گرد ایک حصار ہو جائے۔ اب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے, لیکن آیت الکرسی جب پڑھتا ہے کوئی انسان تو اللہ تعالیٰ فرشتہ نہیں مقرر کر دیتا اس کے لیے حفاظت کے لیے, رات کو پڑھے گا صبح تک فرشتہ اس کے ساتھ حفاظت کے لیے رہے گا, تو اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا اور آپ کو کیا چاہیے, آپ کو تو باڈی گارڈ مل گیا, اب ڈرنے کی کیا بات ہے۔ پڑھ پڑھ کے بھی ڈرتے رہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کلمات کے اوپر یقین نہیں, آپ پڑھیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں اب کوئی چیز نہیں مجھے نقصان دے, نہ وہ نظر بد تو نہ کوئی جادو تو نہ کوئی ایسی چیز۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی اور نفع نہیں دیتی, نفع نہیں نفع دیتا ان کو, یہ وہ چیزیں سیکھتے ہیں جس کا نقصان ہے۔ وہ کتنی حماقت ہے نا کہ انسان وہ چیز لے رہا ہو, پتا چل جائے اگر ہمیں کہ یہ چیز مجھے نقصان دے گی تو انسان کبھی بھی نہ لے, لیکن وہ ان کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے, اس لیے وہ چیزیں سیکھتے تھے لیتے تھے, اسی طرح ہماری بس خواہشات پورے ہوتے ہیں۔ آج بھی کیا وجہ ہے, لوگوں کو کیا پتا نہیں کہ یہ حرام ہے, کس کو نہیں پتا, پھر بھی کیسے چل رہے ہیں کاروبار ان لوگوں کے, مسلمان ملکوں میں کیسے چل رہے ہیں, یہاں پہ ہر کوئی مسلمان ہے کیسے چلتے ہیں ان کے کاروبار, پھر بھی وہ بھی سیکھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ چیز لیتے ہیں جو نقصان دیتی ہے نفع نہیں دیتی۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ نفع نہیں ہے اس میں اور ہمیں اگر قرآن پہ ایمان ہے, دیکھیں جو پہلی آیت آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کیا تھی, پہلی بات جو پڑھی تھی کیا تھی, لا ریب فی, اس قرآن میں کوئی شک نہیں کرنا, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ تو پھر اس چیز کو یہاں پہ لا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان دیتی ہے ان کو, نفع نہیں ہوتا اس میں, آپ کو نفع نظر آتا ہے نہیں نہیں اس سے ہمارا یہ کام بن جائے, آپ کی بات سچی ہے اللہ کی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں نقصان ہے نفع, اور جو سیکھنے والا ہے اس کے لیے بھی نقصان ہے کہ ایسا نقصان ہے۔ اب یہ آگے دیکھتے ہیں, وَلَقَدْ عَلِمُوا, البتہ تحقیق وہ جانتے تھے, یہ یہود کو پتا تھا جیسے آج ہمیں بھی پتا ہے, ان کو کیا پتا تھا, لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ, جو اس کو خریدے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان ہی چلا گیا, جب کفر میں انٹر ہو گیا تو پھر کیا آخرت میں حصہ ہوگا, تو یعنی آخرت اپنی برباد کر لے گا اگر کوئی یہ کام کرے, اگر دنیا میں کوئی چھوٹا سا فائدہ ہو بھی جاتا ہے آخرت ہی چلی گئی تو کیا ملا, پھر بھی لوگ اس کے پیچھے جاتے, نفع نہیں ہے اس میں نقصان ہے, ये दिमाग में बिठा लें बात, इन लोगों के पास जाना, वो किसी किस्म की भी चीजें कर रहे हैं, कोई भी चीज कर, अल्लाह का दर ही एक ऐसा दर है जिससे मांगो, और वहीं से मांगना, और अल्लाह को ही कहना, अल्लाह हमने तुम्हारे पास कोई और नहीं सिवाय तेरे, हमने तो तुझी से मांगना है और यहीं से लेना। तो मोमिन तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो अल्लाह से मांगा थोड़े दिन, फिर उसके बाद कहीं और चल पड़े, वहां नहीं दाल गली कहीं और चल पड़े, ये क्या ईमान है? तो ऐसे लोगों का फिर आखरत में तो कोई हिस्सा नहीं, उनकी आखरत तो खत्म हो गई। वाला बिस माशारू भी अनफुसहुम, और कितना बुरा है जो उन्होंने बेच डाला साथ इसके अपनी जानों को, यानी कितनी बुरी चीज है जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों का सौदा कर लिया, जादू सीखने के शौक में अपनी जानों को बेच दिया, जादू कराने के शौक में कि हमारी मर्जी का हो जाए जैसे हम चाहते हैं। आपको वाकई वो कहते हैं ना कि यू हैव टू सेल योर सोल टू द डेवल, तो वो वाकई बात सही है, और जादूगर यही करता है, अपना सोल बेचता है डेवल को। पता नहीं जिसने भी ये कही होगी वो उसने इस तरह से कही है या नहीं, लेकिन ये हकीकत है, वो उसका सोल अल्लाह के लिए नहीं जाता, डेवल के लिए ही होता। तो कितना घटिया सौदा उन्होंने किया, लहु कानू यालमून, काश के वो जानते होते, काश के उनको इल्म होता, लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमाया वलकद आलिमो, वो तो जानते ही थे, फिर यहाँ पे क्यों कहा गया लव कानू यालमून, काश वो जानते थे, वो तो जानते ही थे कि इसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर ये आपसे सवाल है कि फिर क्यों कहा गया काश वो जानते होते, इसलिए कि वो ये जानना था ना उनका, वो सिर्फ जाहिरी जानना था, जैसे हमें भी आज पता है जादू हराम है, शिर्क हराम है, हमें क्या नहीं पता फिर कयामत आनी है, कयामत में हिसाब किताब है, ये जवाब देना पड़ेगा मुझे, जानते हैं ना सब, सब जानते हैं ना, फिर उसके बाद क्या, वही काम करते हैं। तो ये ऐसे ही अल्लाह के नजदीक जैसे आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उस जानने का क्या फायदा अगर कयामत के दिन फिर खड़े हों और फिर ये क्या हो गया। जानना तो वही फायदामंद है ना जो अमल में आए, जो अमल को बदल दे। और देखिए अब मसलन झूठ का हमें पता है कि वो भी गुनाह है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं, तो फिर ऐसे इल्म का क्या फायदा, ऐसे जानने का क्या फायदा, जिसका कोई कोई हासिल ही नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, उस जानने का क्या फायदा। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब है, फिर भी हमें परवाह ही नहीं, फिर भी हम गाफिल हैं, गफलत में जिंदगी गुजार रहे, तो इस पता होने का क्या फायदा। कौन से मुसलमान को नहीं पता क्या मत आनी, तो उस पता होने का क्या फायदा फिर बता। इसी तरह इनका था, उनको भी पता था कि आखिरत में ऐसा कोई हिस्सा नहीं, फिर भी जा जाके उन्हीं से सीखते थे और यही काम करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काश वो जानते होते, यानी उनको हकीकी इल्म होता है, इल्म नाफे, जिसको हम दुआ भी करते हैं ना, लम्मा इन्नी अस्अलुका इल्म नाफे, अल्लाह इल्म नाफे अता फरमाना मुझे, तो इल्म नाफे काश इनको मिल जाता, काश ये वो ले लेते हैं जिससे इनकी जिंदगियां बदलती। देखिए आप फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाए आज अगर ऐलान होता है कि देखें जो कोई भी ट्रेन में आज खड़ा हो के न्यूयॉर्क तक जाएगा, जो खड़ा होके गया 1.5-2 घंटे का मसलन सफर आप करके गया, तो जब वहां वो पहुंचेगा ना, तो उसको एक घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, उसके बच्चों का जो भी फीस है वो पे की जाएगी, उसका जिंदगी भर का खर्चा उठाया जाएगा घर का, उसके बिल्स पे किए जाएंगे, उसका मेडिकल फ्री होगा, सब कुछ उसका टेकन केयर होगा। मुझे बताएं कि हमारा हाल क्या होगा, लड़ लड़ के लोग खड़े होके जाएंगे, कहेंगे हमें तो इस पर सवार कर दो, तो बस हम तो खड़े होके ही जाएंगे, सीट है अभी तो तब भी नहीं हमने बैठना, क्यों? इसलिए कि वहां पे ये मिलेगा ही ना। हमें कहा गया इस छोटी सी जिंदगी में खड़े होके चले जाओ, यानी वो कर लो, थोड़ी सी मुशक्कत है ये बर्दाश्त कर लो, तो फिर हमेशा की जन्नत है, उसमें घर भी है, उसमें सवारियां भी हैं, उसमें सुकून भी है, उसमें खुशियां भी हैं, उसमें हर चीज टेकन केयर ऑफ है, लेकिन हमें क्या यकीन है इन वादों पे? तो होता तो फिर हम यहाँ की मुश्किलें हंसी खुशी ना बर्दाश्त कर लेते, अगर ये यकीन होता वाकई तो फिर तो हम यहाँ पे जो भी हो रहा हो कहते कोई मसला नहीं, ये तो थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो जाके मुझे इतना कुछ मिल जाना, यानी यकीन नहीं है। لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے, جبکہ وہ ہمیں پتا ہے سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں انگلی ڈبو اور نکالو تو جتنا پانی انگلی پہ لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور جو سمندر ہے یہ آخرت ہے. ہمیں سب کو پتا ہے, سب کو یہ حدیث آتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو انگلی پہ لگا ہوا پانی ہے یہ اسی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں, کبھی جادوؤں کے پیچھے جا رہے ہیں, کبھی رس ٹونے ٹوٹکے کے پیچھے, کبھی فلاں کے پیچھے, کبھی ہائی میری یہ خواہش پوری ہو جائے, کبھی لڑائیاں کرا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ کی اطاعت وہ مشکل لگ رہی ہے, سستیاں کر رہے ہیں, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ہائے کیسے کریں, ہائے ہوتا نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی میں بھی اطاعت ہمارے لیے اتنی مشکل ہے, ہاں گناہوں سے بچنا, ہاں یہ تو بڑا ہی مشکل. وہ اس ٹرین میں بیٹھا ہوا تو کوئی نہیں کھڑا ہوا کوئی نہیں کہے گا کہ بڑا ہی مشکل, کہے گا نہیں. اگر پتا چل جائے نا کہ یہ سب کچھ ملنا ہے تو لڑیں گے, ہمیں کھڑے ہو کے جانا ہے. جیسے ہجر عصمت کو چومنے کے لیے لڑتے ہیں لوگ, کیسے آگے بھیڑ لگی ہوتی, کیسے دھکے دیتے, اس طرح ہم لڑنے لگے. جیسے ہمیں پتا چل جائے کس طرح قیامت کے دن جو مسجد میں نماز پڑھنے والا نمازی ہے پہلی صف والے کو کتنا اجر ملے گا دوسری, اگر یہ دنیا میں پتا چل جائے نا. نو کانو یا لمون, پتا تو ہے لیکن وہ والا پتا نہیں ہے نا, وہ پتا چل جائے نا کیسا ہے تو بھی لڑے وہاں پہ, مجھے جگہ دو. اگر یہ پتا چل جائے کہ ایک نیک عورت کو کیا ملنا ہے وہاں پہ, اور اتنے نیک بننے کے لیے ریس لگا دیں, لیکن یہاں پہ ریس کس میں لگی ہوئی, شاپنگوں میں, کپڑے زیور میں, اس میں ہماری پرائرٹیز ہی اور ہے نا. لو کین ہوں یا علم ہوں, یہ ہمارے لیے بھی ہے, کاش جانتے ہوتے, کاش علم ہوتا. پڑھ کے بھی علم نہیں ہے, ہمارا حال وہی ہے, لقد علم ہوں, وہ تو جانتے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کین ہوں یا علم ہوں. علم صرف اس کو ہے کہ پھر اس نے اپنی پرائرٹیز بدل لی, اس نے اپنی زندگی بدل لی, اس نے جو ڈائریکشن تھی وہ اس نے اپنی چینج کر لی اور کہا نہیں اب یہ علم لیا نا اب اس کے مطابق چلنا, وہ ہے جو اصل علم والا. باقی بے علم ہے, جاہل ہیں, چاہے انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہوئے ہیں گریجویشن میں, چاہے تاج پہن کے کھڑے ہو گئے ہیں, چاہے ان کو ہار پہنائے گئے ہیں, میڈل دیے گئے ہیں, وہ جاہل ہی ہیں. اس لیے وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں, اس علم کو کیا کرنا جو وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں اور اسی چیزوں کی اگر سزا بھگت رہے جن کا منع کیا گیا تھا. ہاں ہمیں پتا تو تھا پھر کیوں نہیں کیا, بس نہیں کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, یہ چیزیں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے, جو یہود اس وقت کے بھی تھے آپ کو پتا, وہ بھی بہت جادو میں تیز تھے, لبید نے کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو, یہودی تھا, انہوں نے چیزیں تو نہیں چھوڑی تھی وہ, تو یہ کاش ایمان لاتے وہ والے لوگ بھی, اور انہیں یہ جو اس وقت کرنٹلی مدینہ میں تھے یہود, یہ بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے. جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا تھا تو بہت بڑی چیز تھی, یہ انہی چیزوں میں پڑے رہے. ہماری جتنی بھی کوئی بڑی خواہش ہو, کتنی بھی بڑی خواہش ہو جس پہ ہم مر رہے ہیں, اگر وہ نہیں بھی پوری ہوتی اس دنیا کے اندر تو بھی کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. اگر انسان کا یہ ایمان ہے نا کہ ایک آخرت ہے, مجھے وہاں پہ سب کچھ مل جائے, یہاں پہ نہیں بھی پورا ہوا مجھے وہاں پہ جنت میں مل جانا ہے, جو کہوں گی وہ ملے گا, تو کیا اس کو قرار نہیں آ جائے گا, یا وہ کہے گا کہ نہیں میں جاؤں اور جا کے اس وقت کوئی تعویذ کراؤں کچھ بھی کراؤں بس یہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. لو کانوا یعلمون, پھر فرمایا ان کو کاش یہ بات پتا چل جائے کہ ایمان اور تقویٰ کتنی بڑی چیز ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں بھی پتا چل جائے کہ ایمان اور تقویٰ, یہ کاش ہم اس کی طرف جائیں, اس کو زیادہ توجہ دیں, وہ اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ کتنا بڑا ملے گا ہمیں, یہ تو وہاں جا کے آنکھ کھلے گی نا, پتا چلے گا کہ وہ اس نیکی کا اتنا بڑا ثواب تھا, وہ میری دوست نے کر لی میں بھی تو کر سکتی تھی, ہائے میں کتنی پاگل تھی میں نے کیوں نہیں کی. جب وہاں پہ ریوارڈز دیکھیں گے, اور جب بھی وہاں پہ وائس ورسا بھی ہے, جب وہاں پہ گناہ کا دیکھیں گے کہ ببال کتنا بڑا, ہائے تو پھر میں نے کیوں کیا, میں چھوڑ سکتی تھی میں نے کیوں نہیں چھوڑا, کتنا افسوس ہوگا. चलेगा इसका गुनाह का बबाल क्या है, तो दुनिया में थोड़ी पता चल रहा था। अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास जो अजर था वो बहुत बड़ा था, बहुत बेहतर था। काश इनको पता हो, हमें सिर्फ जाहिर नजर आता है ना यहाँ से, हमें तो नजरों से ओझल है। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें ये जादू टूनों और इन चीजों से जो कुफर की चीजें, अल्लाह इनसे हमें महफूज रखे हमेशा, सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे, हाथ उठे तो सिर्फ अल्लाह के आगे हमेशा उठे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनो।
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون